الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ کہف کی آیت 56 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اس سے پچھلی نشست میں جس انذار اور جس تنبیہ کا ذکر ہو رہا تھا اسی کا مضمون اب آگے بڑھایا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ میں یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر انذار و بشارت کے لیے آتے ہیں، ان کا اصلی مقصود یہی ہے، وہ لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں اگر انسان کے علم و عمل کا جائزہ لے کے دیکھا جائے تو ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ پوری دنیا کا نظم اسی انذار پر قائم ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں بھی یہی ہے، ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، وہ انذار شروع ہو جاتا ہے۔ انذار کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس میں تمہاری کچھ جبلتوں کے تقاضے ہیں، کچھ تمہاری خواہشوں کے تقاضے ہیں، کچھ تمہارے جذبات کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرتے وقت تمہارے سامنے ہر جگہ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تم اپنی جبلتوں کو علم و عقل پر حاوی ہونے دو، اور ایک یہ کہ جبلتیں اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ ہر حال میں علم و عقل کے تابع رہیں گی۔ والدین کیا کرتے ہیں، اساتذہ کیا کرتے ہیں، معاشرہ کیا کرتا ہے، وہ انذار کرتا ہے، خبردار ہو جاؤ، اگر علم و عقل کی برتری قائم نہیں رکھو گے اس کے کچھ نتائج اسی دنیا میں نکل آنے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم اگر اپنے سونے کے اوقات ترتیب میں نہیں رکھو گے، کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرو گے، تجربہ بتاتا ہے کہ پھر اس کے کچھ برے نتائج نکل آتے ہیں۔ تو ہر جگہ ہم عمل کو اس کے نتائج یا اس کے کنسیکوئنسز سے متعلق کر کے انذار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، خبردار، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ طبیب کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہی بتا رہا ہوتا ہے، اساتذہ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پرتو ڈال دیا ہے اپنی اسکیم کا اس دنیا پر، ایک لمحے کے لیے بھی نہ اس کو ماننے والے اس سے انحراف کر سکتے ہیں، نہ ماننے والے انحراف کر سکتے ہیں۔ دو ہی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی یہ کہ یہ عالم ابتلاء کے قانون پر بنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ یہ ابتلاء ہے، یعنی جیسے ہی شعور کی آنکھ کھلتی ہے ابتلاء شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا کے لحاظ سے دیکھیے، اس صورت میں بھی ابتلاء ہے۔ اس کو آخرت کے لحاظ سے دیکھیے، صورت میں بھی ابتلاء ہے۔ ایک امتحان، ایک آزمائش، اور وہ امتحان و آزمائش کیا ہے؟ یہی جبلتوں اور علم و عقل کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جبلتوں کی اور انسان کی قدری شخصیت کی یا اس کے اخلاقی وجود کی ایک جدلیات ہے، وہ برپا ہے۔ اس میں معاشرہ کیا کر رہا ہے، سوسائٹی کیا کر رہی ہے، ریاست کیا کر رہی ہے، اہل علم کیا کر رہے ہیں، وہ صرف انذار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، متنبہ ہو جاؤ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی کو اس دنیا سے اٹھا کر موت کے بعد کی زندگی سے متعلق کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا کام جو اس دنیا میں کرنے کا ہے، وہ اگر آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں اس صورت میں بھی یہی ہے، اور اگر آپ دین کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ دنیا کی اسکیم واضح کر دی جائے کہ وہ ابتلاء کی اسکیم، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ ابتلا لازماً جزا و سزا پر منتج ہو جاتا ہے، یعنی یا اس کا اچھا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے یا برا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، اس کے بارے میں انذار۔ اس زاویے سے دیکھیے تو انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی کہ لوگوں کو خبردار رکھا جائے، متنبع رکھا جائے، بیدار رکھا جائے، ان کو بتایا جاتا رہے۔ جو لوگ اس دنیا ہی کی زندگی پر معاملات کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مجبور ہیں کہ یہی کریں، اور پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کہ لوگ علم و عقل کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے سے گریزاں ہو رہے ہیں، وہ اپنی جبلتوں کی طرف بہکتے چلے جا رہے ہیں، جبلی تقاضے علم و عقل کے تقاضوں پر حاوی ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کو خبردار کیا جائے۔ تو مبشرین و منذرین، اب انذار اور بشارت اگر غور کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ابا کس سے ہوتی ہے؟ اسی سے۔ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا کھانے پینے میں احتیاط، معاملات میں احتیاط، کھیلو لیکن اس کے اوقات مقرر کر کے، کیونکہ یہ زندگی ابتلا کی زندگی ہے، اس میں تم نے اپنی صلاحیتوں کو ایک امتحان سے گزارنا ہے، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی طبیعت پہ بڑی گرانی ہوتی ہے، پیغمبر بھی، سب سے مشکل کام یہی بن جاتا ہے کہ لوگوں کو خبردار رکھا جائے۔ اساتذہ، بزرگ جو بھی کرے گا یہی کرے گا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں نتائج کو عمل سے متعلق کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس ابتلا کے لازمی نتائج تمہارے سامنے آ جانے ہیں، ان کے بارے میں ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے متربع ہو جاؤ، کیونکہ یہ دنیا اپنی جزا و سزا برپا کر کے رہے گی، وہ اسی دنیا میں ہو جانی ہے۔ وہ ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہو سکتا ہے، وہ ہمارے رویوں کا امتحان ہو سکتا ہے، وہ ہماری سعی و جہد کا امتحان ہو سکتا ہے، اس نے بھی بڑی حد تک نتیجہ خیز ہو جانا ہے، اور قیامت کا نتیجہ تو حتمی ہے، قطعی ہے، ہر حال میں نکل کے رہنا ہے۔ پیغمبر یہ کرتے ہیں، جب پیغمبر یہ کرنے اٹھتے ہیں تو جیسے والدین کا انذار، جیسے ایک طبیب کا انذار، جیسے آپ کے کسی عزیز کا، قریبی کا، کسی دوست کا، کسی آپ کے محبت رکھنے والے کا، خیرخواہی چاہنے والے کا انذار تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خواہشوں سے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہتا ہے، وہ جبلی تقاضوں کو پورا کرنے سے روکنا چاہتا ہے یا انہیں ایک حد کا پابند کرنا چاہتا ہے، تو ابا ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا اسے قبول کرنا۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہے، چنانچہ پیغمبروں کے مقابل میں پھر جو کٹ حجتیاں کی جاتی ہیں، کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی آسمان سے آواز آنی چاہیے، کتاب ہمیں اترتی ہوئی نظر آنی چاہیے، ایک نوعیت کے مطالبات یہ ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں فیصلہ ہو جانا ہے، خاص طور پر رسول، دنیا میں فیصلہ ہو جانا ہے، اس کے جواب میں جو کٹ حجتی ہے وہ یہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ لا کے دکھاؤ، آ جائے پھر عذاب، دیکھ لیں گے اس کو، یہ صورت ہوتی ہے۔ یہ نتیجے کو وقت سے پہلے بلانا ہے، تو نتیجے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے ہر نتیجے کو اجل دے رکھی، اس کا ایک وقت ہے، وہ اسی وقت سامنے آنا ہے۔ انسان اس میں عجلت سے کام لیتا ہے، جلد بازی اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح کے مطالبات کرتا ہے۔ قرآن نے ہر جگہ اس کا ایک ہی جواب دیا ہے، اب وہ جواب یہاں بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ تم نے دیکھ لیا کہ ہدایت کے آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس کو قبول کرتے، اس لیے کہ وہ بالکل فطرت پر مبنی، جس طرح میں نے عرض کیا، ایک بات کہی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اس کو لوگ تو جیسے بھی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے، جو اس کا خلق و امر ہے، اور جس میں اس کے افعال کا ظہور ہوا ہے، اس کی جو ایک برتر صورت بنتی ہے جب ہم اس کو ذات باری کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بڑے چھوٹے پیمانے پر، ادنا ترین درجے میں اسی کا پرتو انسان اور اس کی زندگی پر پڑا ہے۔ वैसे लगता है कि एक नक्शा है जिस नक्शे को बहुत कॉन्डेंस करके उसे इंसानों की ज़िंदगी बना लिया गया है। इस नक्शे में बिल्कुल वही चीज़ नमूदार हो जाती है और अब ये कठोरजितियाँ सामने आती हैं। तो होना ये चाहिए था कि ये लोग ईमान लाते, पीछे फरमाया था कि इनका काम तो ये था कि आई यो मिनु इजा इज जा हमुल हुदा, जब इनके पास अल्लाह की हिदायत आ गई थी। तो हिदायत ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसके बारे में कोई शुबा पैदा हो जाए, हो ही नहीं सकता। इंसान दर हकीकत अपनी ज़िंदगी के हकायक से इंतज़ार को मुतल्लक करने से गुरेज करता है, वरना तो बड़ी सादा बात है कि जो हम ज़िंदगी में मान रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस पर हमारी मौजूदा ज़िंदगी उस्तवार है, सिर्फ उसको एक दूसरे नतीजे से मुतल्लक करके अंबिया ने दिखा दिया और कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन वो ईमान नहीं लाता, ईमान नहीं लाता यानी मानता नहीं, गुरेज करता है, फरार के रास्ते इख्तियार करता है। और दूसरे ये कि जैसे ही इंसान को शऊर हो जाए कि मैंने सही तरीके पर ज़िंदगी बसर नहीं की, मैं सिरात मुस्तकीम पर नहीं रहा, मैंने अपनी जबिल्लतों को इल्म व अक्ल का पाबंद नहीं बनाया, मेरे वजूद पर यही चीज़ें हावी रही हैं, जैसे ही एहसास हो तो इंसान मगफ़रत चाहे, जैसे मैंने पिछली नशिस्त में अर्ज़ किया था कि वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है। जैसे ही उसको हकीकत मालूम होती है, बंदा मोमिन का सबसे ज़्यादा मुदाम अमल, हमेशा रहने वाला अमल क्या है? इस्तग़फ़ार। उठते बैठते, नमाज के बाद आपकी आंख खुली, आप सोने के लिए गए, तो इस्तिग़फ़ार, परवरदिगार मैं मग़फ़रत चाहता हूँ। वो क्या चीज़ है? वो असल में तजदीद ईमान के अमल के साथ अपने गुनाहों पर नज़र करना। यानी ये तजदीद ईमान कोई रस्मी चीज़ नहीं होती। जिस वक्त हम सुबह उठ के ये कहते हैं कि उस परवरदिगार का शुक्र है जिसने एक मौत के मरहले से हमको गुजारा और फिर उठा दिया, अहयाना बादमा मातना व इलैहिन नुशूर, तो ये ईमान का इजहार है। यानी हम अपने ईमान की तजदीद कर रहे होते हैं। जब हम रात को बिस्तर पर जाते हैं और ये कहते हैं कि परवरदिगार हमने अपना आप तेरे सपुर्द कर दिया, असलम तो नफसी ले, अपना चेहरा तेरी तरफ कर दिया, अपना वजूद तेरे सपुर्द कर दिया, ये सब तफवीज़ है। और फिर आखिर में क्या कहते हैं कि हम उस पैगम्बर पर ईमान ले आए हैं जिसको तूने नबूवत और रिसालत का मनसब दिया है, और उस किताब पर जो उसके साथ नाजिल हुई। तो ये दुआ क्या कह रही है? ये गोया सोते वक्त का तजदीद ईमान है। तो हिदायत का शऊर तजदीद ईमान का जज्बा पैदा करता है। वो बड़े स्पैन पर करे कि एक कौम लंबे अरसे तक हिदायत से महरूम रही, पैगंबर ने आके बता दिया। तो हमें ये तरबियत दी गई है कि हम सुबह शाम उठते बैठते जिक्र दवाम का अहतमाम करें, हमेशा का जिक्र। ये हमेशा का जिक्र क्या है? ये यही है, यानी ज़िंदगी के हर मरहले पर तजदीद ईमान होती रहे। इस तजदीद ईमान का दूसरा लाजमी तकाजा क्या है? मैंने सुबह से दोपहर तक का वक्त गुजारा है, रात तक का वक्त गुजारा है, परवरदिगार मैं मगफ़रत अस्तग़फ़िरु रब्बी, मेरे परवरदिगार मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस्तग़फ़ार और तजदीद ईमान, ये है एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी। इस ज़िंदगी के अंदर अगर इंसान एक मरतबा अपने वजूद को हम आहंग कर ले तो फिर वो नूर है, सलामती है, वो सही रूह पैदा हो जाती है। इनको तवज्जो दिलाई कि ये होना चाहिए था। यानी तुम्हें सुबह उठते हुए याद नहीं आया, रात सोते हुए याद नहीं आया, किसी बड़ी मुसीबत के वक्त याद नहीं आया, किसी बड़ी मसरत के वक्त याद नहीं आया, अब तो पैगंबर आ गया है तुम्हारे दरमियान, उसने आके इंतज़ार कर दिया है। यानी ये इंतज़ार जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना, माँ कर रही है, बाप कर रहा है, असातिज़ा कर रहे हैं, ये सुबह कर रही है, शाम कर रही है, सूरज कर रहा है, चांद कर रहा है, इंतज़ार ही इस कायनात की फितरत है। और ये क्यों ज़रूरी है? मैंने अर्ज़ कर दिया कि जिस जदलियात में हमें मुब्तला किया गया है, उस इब्तला का नागुज़ीर तकाजा यही है। इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत भी इंतज़ार है, सबसे बड़ा काम भी इंतज़ार है, सबसे बड़ी नेमत भी इंतज़ार है। इसलिए खुदा ने अपनी किताब को भी एक सहीफ़ा इंतज़ार बनाकर नाजिल किया है। फरमाया था कि ईमान लाते और मगफ़रत मांगते, लेकिन क्या हुआ? वजह ये बताई थी कि इन्होंने ये कहा, अगर पुरानी कौमों के किस्से सुना सुना कर हमें मुतनब्बे करते हो यानी इंतजार करते हो, तो उनके साथ जो हुआ था फिर कर दिखाओ, या जिस नौइयत का अजाब हम पर लाना चाहते हो ला के दिखा दो। ये क्या चीज़ है? नतीजा दिखाओगे तो मानेंगे, ये नतीजा दिखाओगे तो मानेंगे, ये क्या है? ईमान बिज़ाहिर। और नतीजा मौखर है, इल्म व अकल के इस्तदलाल से मानेंगे, ये क्या है? ईमान बिल गैब। तो ईमान बिल गैब की दावत देते हैं पैगंबर कि तुम बिन देखे इल्म व अकल की बुनियाद पर मानो, इसलिए कि यही इम्तहान है, यही इब्तला है। नतीजा देखने के बाद तो बैल भी मान लेंगे। ये बयान करने के बाद अब बताया है कि क्या पैगंबर ये करने के लिए आए हैं, नतीजे दिखाने के लिए आए हैं, आखिरत बर्पा करके दिखाएं, तुम्हारे मुतालबात पूरे करके दिखाएं। फरमाया व मा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबशरीन व मुनज़रीन। इन्हें बताओ कि रसूलों को तो हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बशारत दें और खबरदार। उनको भेजने का मकसद ही ये, वो सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं, ना मौजज़े दिखाने के लिए आते हैं, ना ये उनकी कोई जिम्मेदारी है, ना इस तरह के मुतालबात उनसे करने चाहिए। वो तो एक बड़ी हकीकत जो नमूदार होने वाली है, एक बड़ा नतीजा जो निकलने वाला है, उसके बारे में ऐसे ही मुतनब्बे करते हैं जिस तरह दुनिया का हर शख्स तुम्हें दुनिया में निकलने वाले नतायज के बारे में मुतनब्बे कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है। वो ये करने के लिए आते हैं। इस पर मैंने लिखा है, यानी फैसले का वक्त आने से पहले लोगों को फरमा बरदारी के अच्छे और नाफरमानी के बुरे नतायज से खबरदार कर दें। अल्लाह की फरमा बरदारी अपनी रूह में क्या है? इल्म व अक्ल को अपनी जबिल्ली तकाज़ों पर हावी रखना, यही अल्लाह ताला की फरमा बरदारी है। और जब इसकी खिलाफवर्जी होती है तो ये उसकी नाफरमानी है। दीन इन्हीं हकायक को कायदे जाब्ते में लाकर इंसान के लिए सिराते मुस्तकीम मुतय्यन कर देता है, ताकि वो अपने तौर पर अगर नतायज निकालेगा और सही उसूल पर भी निकालना चाहेगा तो इज्तिहादी गलतियाँ करेगा, उससे उसको बचा लिया जाए। यानी फैसले का वक्त आने से पहले लोगों को फरमा बरदारी के अच्छे और नाफरमानी के बुरे नतायज से खबरदार कर दें, मगर ये अहमक इससे फ़ायदा उठाने के बजाय उन्हीं बुरे नतायज के लिए बेताब हो रहे हैं जिनसे खुदा के पैगंबर इन्हें बचाना चाहते हैं। अरे पैगंबर इसलिए आए हैं कि तुमको अजाब में मुब्तला कर दें, इसलिए आए हैं कि तुमको खायब व खासिर करके रखते हैं। वो तो तुम्हें बशारत देने आए हैं और जिस चीज़ को तुम तलब कर रहे हो उससे बचाने आए हैं, लेकिन तुम उनकी बात पर खबरदार होने की बजाय ये क्या रास्ता इख्तियार करते हो? और ये रास्ता क्या फिलवाके इल्म का तकाजा है? क्या फिलवाके अक्ल का तकाजा है? फरमाया नहीं। वयुयादिलुल्लज़ीन कफरू बिल बातिल लियुदहिज़ू बिहिल हक। और इन मुनकरों का हाल ये है कि बातिल की मदद से कठजुतियाँ करते हैं। यानी इंसान जब किसी चीज़ के बारे में सवाल उठाता है, उसमें मसले निकालता है, मुँह शगाफियाँ करता है, तो बाज़ औक़ात ये तबई तकाज़ा भी होता है, सीखने वाले इस तरह सीखते हैं, यहाँ मुहर्रिक सही हो जाता है, तो हम उसको कठहुज्जती तो कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि तुम ये नक़्दो नज़र का तरीका सही इख्तियार नहीं करते, लेकिन वहाँ मुहर्रिक सही होता है। चुनाचे अल्लाह ताला जल्द या बदेर राह हक़ को खोल देता है। दूसरा ये है कि नहीं, मुहर्रिक भी गलत, जिस नतीजे की तवक्को कर रहे हैं वो भी गलत, रवैया भी गलत, तो ये बातिल की मदद से कठहुज्जती है, यानी मुजादला है बिल बातिल। यहाँ इंसान इसलिए सवाल नहीं उठा रहा कि बात समझना चाहता है, इसलिए किसी चीज़ आप कह लीजिए कि बाल की खाली उतार रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो किसी चीज़ के अमाक में उतरना चाहता है, उसको अंदर से समझना चाहता है। वो एक अच्छा तालब इल्म भी करता है, लेकिन अगर मुहर्रिक गलत है, इरादा गलत है, और गुरेज और फरार के रास्ते तलाश करने हैं, बुनियादी मसला ये है कि जबिल्लतों ने जिन चीज़ों का असीर कर रखा है, खा वो इंसान के नफसी पहलू हैं या उसके इज्तिमाई पहलू हैं, उन चीज़ों से निकलना नहीं चाहते, तो ये बातिल की मदद से कठहुज्जतियाँ हैं, ये मुजादला बिल बातिल है। माया क्यों करना चाहते हैं, ले युधिज़ु बिहिल हक, कि इसके ज़रिए से हक को नीचा दिखाएं, यानी मुहर्रिक ये नहीं है कि खुद हकीकत तक पहुँचें, वो तालिबिलमाना मुनाक्षा है, वो तालिबिलमाना मुजादला है, वो बड़ी नेमत और बड़ी अल्लाह की इनायत है, एक अच्छा तालिबिल्म भी करता है। ये तालिबिल्म में आना मुजादला नहीं है, ये हक को नीचा दिखाने के जज्बे से। ये क्या अहमकाना बातें करते हैं ये मज़हबी लोग, किस चीज़ की बात है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस, इसमें तो ये ख़राबी है, इसमें तो ये खामी है, इसमें तो इस्तदलाल का ये नक्स है, तो यहाँ मुहर्रिक गलत हो गया। ये बिल्कुल तजर्बे की बात है कि सही मुहर्रिक के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ बहस भी हमेशा अच्छे नतीजे तक पहुँचती, लेकिन गलत मुहर्रिकात कभी नतीजा खेज होने ही नहीं देते, बल्कि आदमी कदम ब कदम हक से दूर होता चला जाता है, यहाँ तक कि फिर उस मकाम पर पहुँच जाता है जिसको कुरान ने बयान किया कि उसके दिल पर मोहर लग जाती है, उसके वजूद पर जंग आ जाता है, जिसको किस तरह बयान किया कि जागू फा जाग अल्लाह कुलूबहुम, वो टेढ़े हो गए, अल्लाह ने कहा तुम्हें टेढ़ा ही रहना चाहिए, और इसी को दिलों पर मोहर लगने से ताबीर फरमाया। इन लोगों का मुहर्रिक गलत है, रवैया गलत है, ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए से, यानी अपनी कठहुज्जती के ज़रिए से हक को नीचा दिखाएं, पीछे हटने पर मजबूर कर दें, साबित कर दें लोगों पर कुछ नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है। सच्चा तालिब इल्म इस नुक्ता नज़र से कभी बहस नहीं करता, कभी गुफ्तगु नहीं करता। मैंने इसकी वजाहत की है, यानी जब कोई हकीकी दलील नहीं पाते, हकीकी दलील नहीं पाते कि उसके ज़रिए से कुरान के इंज़ार को जुटलाएं, तो इस तरह की बेतुकी बातों से कठहुज्जतियां करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस अजाब से डराया जा रहा है वो आ क्यों नहीं जाता, और जिस क़यामत की खबर दी गई है वो आखिर कहाँ रह गई है। आयत में इन्हीं बेअसल बातों को लफ्ज़ बातिल से ताबीर किया, बेअसल बातें किसी कायदे पर मबनी नहीं है। जब कोई बात किसी कायदे पर मबनी होती है, जब उसूल दुरुस्त होता है, इसके बावजूद इतलाक़ में गलतियां होती, बारह ऐसा हो जाता है, उसूल बिल्कुल दुरुस्त है, मेथडोलॉजी या अप्रोच या जो रास्ता इख्तियार किया है मिनहाज वो बिल्कुल सही है, लेकिन इंसान इंसान है, गलती हो जाती है उसमें। इस तरह की गलतियाँ अल्लाह ताला नतीजे के लिहाज से दुरुस्त कर देते हैं, इन पे तंबी हो जाती है, रह भी जाएं तो कोई क़यामत नहीं बरपा होती, लेकिन जब उसूल में गलती हो जाए, रूह में गलती हो जाए, तो फिर वो रवैये पर, तर्ज अमल पर असरअंदाज होती है। वो जो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने सहाबा के बारे में कहा है कि उनका इल्म भी बड़ा गैर मामूली था, वो इल्म के लिहाज से भी अपने अंदर बड़ी गहराई रखते थे, तकवे और नेकी में भी उन्होंने हकीकत को पा लिया हुआ था, उनका अमूमी रवैया इल्म और अमल दोनों में तकल्लुफ़ से पाक था। ये तीन चीज़ें बयान करके फिर उन्होंने ये बताया, उसका नतीजा ये है कि उन्होंने जिस चीज़ को अच्छा करार दे दिया अपनी जमात के लिहाज से वो अच्छी है, और जिसको बुरा करार दे दिया वो बुरी है। तो वहाँ अच्छा और बुरा होना किस पहलू से है, क्या उनसे किसी इज्तिहादी मामले में गलती नहीं हुई, नहीं, उसूल ठीक रखा है, तर्ज अमल बिल्कुल दुरुस्त है, नतीजा निकालने के लिए मिनहाज बिल्कुल सही इख्तियार किया गया, असल में यही है जिसको पाना होता है। इसी को सामने रख कर फिर हमारे यहाँ ये राय कायम की गई कि अगरचे अबू हनीफा और शाफ़ी और मालिक या इसी तरह दूसरे अइम्मा वो एक दूसरे से इख्तलाफ़ करते हैं, लेकिन सब हक पर हैं। हक पर होने का ये मतलब नहीं है कि उनमें से हर एक की राय ठीक है, राय में गलती हो सकती है, उनका मिनहाज दुरुस्त है, वो इस रास्ते पर चल रहे हैं, जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया वो दुरुस्त है। तो यहाँ बड़ी गैर मामूली बात है जिसकी तरफ कुरान ने तवज्जो दिलाई, यानी एक ये कि पैगंबरों का इंतज़ार और पैगंबरों की बशारत कोई मामूली चीज़ नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है अगर तुम इसकी कदर पहचानो। उनसे इस तरह के मुतालबात करना जो तुम कर रहे हो, ये तो अपनी शामत को दावत देना है, असल चीज़ ये नहीं थी। और उसको बयान किया है कि ये क्या है, ये मुजादला बिल बातिल है, इसके पीछे मुहर्रिक ये नहीं होता कि तुम्हें सही नतीजे तक पहुंचना है, इसमें मुहर्रिक ये होता है कि जो हक पैगंबर लेके आए हैं उसे नाहक साबित करना, उसको नीचा दिखाना है। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई कि इसका फिर नतीजा भी वही निकलता है, और वो नतीजा क्या निकलता है ये आप अलल इतलाक देख सकते हैं कि जिन लोगों के यहाँ बहस व मुबाहसे का ये अंदाज़ इख्तियार कर लिया जाए, वो फिर इस्तिख़फ़ाफ़ का, इस्तेहज़ा का तरीका इख्तियार करते हैं। हमेशा कुरान मजीद ने कहा वत्तखज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा, इन्होंने भी यही किया, और मेरी आयतों को इन्होंने मजाक बना रखा है, और उस चीज़ को भी जिससे इन्हें खबरदार किया गया, यानी इन्होंने उस अजाब की वईद को, क़यामत को, पैगंबर जिन चीज़ों से ख़बरदार कर रहा है उनको भी मजाक बना रखा है, और मेरी आयतों के बारे में भी इसी तरह से कहीं तजादात ढूंढते, कहीं उनमें मीन मेख निकालते, कहीं बाल की खाल उतार कर पैगंबर को नीचा दिखाने की कोशिश करते, उसके उसलूब पर, उसकी शख्सियत पर तान करने की सही करते। ये सब क्या है? इस्तेहज़ा, इस्तिख़फ़ाफ़। सच्चा तालिब इल्म अपने बदतरीन दुश्मनों के मामले में भी ये नहीं करता। वमन नज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बेआयात रब्बे, फरमाया कि उनसे बड़ा ज़ालिम कौन है कि जिन्हें उनके परवरदिगार की आयतों के ज़रिए से याद दहानी की जाए। दुनिया में अपनी जान पर जुल्म ढाने वाले बहुत रहे हैं। ये ज़ालिम का लफ्ज़ कुरान मजीद में ज़ालिमुन लिनफ्सिही के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ज़ालिमुन लिगैरिही के लिए, दूसरों पर जुल्म करना, उसके मानी और हैं। अपने ऊपर जुल्म करना, अपने ऊपर जुल्म क्या है? हक से जानते बूझते गुरेज करना, जिसका सबसे बड़ा नतीजा शिर्क है या बिदत है। तो फरमाया उनसे बड़ा ज़ालिम कौन होगा कि जिन्हें उनके परवरदिगार की आयतों के ज़रिए से याद दहानी की जाए। यानी अल्लाह की आयतें आ गईं, कुरान आ गया, अल्लाह की किताब आ गई, पैगंबर आ गया, और उन्हें इंतज़ार करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه, तो वो उनसे मुंह फेर लें और अपने हाथों की कमाई भूल जाएं, अपने करतूत याद ना रहें, अपने आमाल याद ना रहें, अपने गरेबान में मुंह ना डालें। वो अल्लाह की आयतों के मुकाबले में एराज का रवैया इख्तियार कर लें और अपने हाथों की कमाई भूल जाएं जो आगे भिजवा चुके हैं। मैंने वजाहत की है, यानी इस बात को भूल जाएं कि जो कुछ कर चुके हैं उसकी बिना पर हर वक्त अजाब इलाही के सजावार हैं। ये फरामोश कर बैठे, अपने करतूत सामने हो, अपना अमल सामने हो, तो इंसान कभी कठहुजती नहीं करता। मैंने अर्ज़ किया कि दो ही रवैये होते हैं उसके, सच्ची बात के सामने सर झुका देना, जैसे सैयदना उमर ने, जब सैयदना सिद्दीक ने तंबीह की है रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद और आयत पढ़ी है, वो फरमाते हैं कि ढह गया, यानी मेरे लिए अपने पाँव पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं रहा। तो ये है ईमान। और फिर अगला कदम क्या है? मगफरत, अल्लाह से माफ़ी वो मांगते हैं। फरमाया कि इन लोगों से बड़ा ज़ालिम कौन है? अब सज़ा बयान की कि फिर इसी दुनिया में इस रवैये का नतीजा क्या निकलता है? इन्ना जालना अला क़ुलूबिहिम अकिन्ना अन यफ़क़हू वफ़ी आज़ानिहिम वक़्रा। पहले मरहले में तो हम चाहते हैं कि ये सुने, समझें, जिसको बयान किया है ना कि जब क़यामत में नतीजा देखेंगे तो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िल, हमने बात को तवज्जो से सुना होता, कठहुजतियाँ ना की होती और अकल से काम लिया होता तो आज यहाँ ना पहुँचे हुए होते। इनको जब ये तवज्जो दिलाई जाती है और ये इसके बावजूद अपने रवैये की इसलाह नहीं करते, तो फरमाया कि फिर हमारी सज़ा शुरू हो जाती है। और वो क्या है? इनके दिलों पर हमने इसी के सबब से पर्दे डाल दिए हैं कि इस कुरान को ना समझें, यानी अब हम चाहते नहीं कि ये समझें, हमने पर्दे डाल दिए हैं, और इनके कानों में गिरानी पैदा करती है कि इसको ना सुने, ना समझें। ये वही क्या है? नाकिल, यानी अब इल्म अकल मुअत्तल हो जाए और ना सुने नस्मा, यानी सुनने का जो अमल है, सुनने का अमल मह यानी कि कानों में आवाज़ आ रही है, अल्फाज आ रहे हैं, यानी वो सुनना जो मन जाब कल्ब मुनीब होता है, जिसमें इंसान अपने पूरे वजूद के साथ किसी हकीकत को समझना चाहता है। तो इरशाद फरमाया कि ये दोनों से महरूम कर दिए गए हैं। अब हमने इनके बारे में ये फैसला कर दिया है कि जितनी देर जीना है वो तो हमारे कानून के मुताबिक अजल मुकर्रर है कौम की, वो आएगी, लेकिन इनमें से जो इस रवैये का हामिल है उसको हम अब चाहते ही नहीं कि वो हमारे दीन को सुने या कुरान की तरफ मुतवज्जे हो, अब उसकी दुनिया में सज़ा शुरू होगी। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम।